نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے اور سنانے کے لیے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس وقت کا بہترین استعمال کروائے، اور آج ہم یہاں جو بات سن کے جائیں وہ حقیقت میں ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے. انشاء اللہ تعالیٰ ان کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں کس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ وہم فی غفلت موریدون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی کبھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے. الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ اس کو کھیلتے کودتے ہی سنتے ہیں، یعنی اہمیت نہیں دیتے، سیریس نہیں لیتے، کوئی سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے. وجہ کیا ہے اس کی؟ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل تو لغو میں مشغول ہیں، بیکار قسم کے مشغلوں میں ان کے دل مشغول ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہیں جیسا. یعنی کوئی نئی بات تھوڑی ہے اس کی، سب کو پتہ ہے یہ باتیں 20 بار سنی ہوئی ہیں، یہ نبی کوئی خاص بات تو کرتا نہیں. اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے بھالتے جادو میں آ جاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، خامخواہ اس باتوں کو اتنا اہم سمجھ لیتے ہو. یہ ہیں وہ چند آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور نقشہ کشی تو اس وقت کے لوگوں کی تھی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ بات آج کے لوگوں کی ہے. اور دیکھا جائے تو لوگوں میں سے اکثریت کا معاملہ ہر دور میں ایک ہی جیسا رہا. کیا؟ پہلی بات انہی آیات کی میں کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. یہ کون سا حساب ہے اور یہ کون سے لوگ ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا وہ حصہ جو گزر چکا ہے اس میں، اور وہ حصہ جو اب آنے والا ہے، یہ نسبت ہے کہ جیسے کپڑا بیچنے والا کپڑا پھاڑے، سارا کپڑا پھٹ چکا ہے لیکن کنی کا تار بچا ہوا ہے. جو کپڑا کاٹتے سیتے پھاڑتے ان کو اندازہ ہے کہ پورا کپڑا ایسے ہی کٹ جاتا ہے، لیکن جب کنی آتی ہے تو اس کو ذرا سے جھٹکے سے پھاڑنا پڑتا ہے. مراد کیا ہے کہ دنیا کا بیشتر وقت گزر چکا ہے، और थोड़ा सा वक्त बाकी है। इसी बात को एक और हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लम ने वाज़े किया, आपने फरमाया कि दुनिया का वो हिस्सा जो गुजर चुका है वो ऐसे है जैसे सुबह की यानी फजर से लेके असर की नमाज तक का वक्त, और जो वक्त बाकी रह गया है वो ऐसे है जैसे असर की नमाज से लेकर मगरिब तक का वक्त। कितना थोड़ा होता है, आप में से सभी को अंदाज़ा होगा इस बात का कि जब सारा दिन गुजर जाता है और शाम से पहले जो असर आती है तो बस वो वक्त तो ऐसे लगता है कि अब दिन भाग जाएगा, असर के बाद तो दिन हाथ ही नहीं आता, कि सारा वक्त गुजर चुका है दुनिया का और बहुत थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। अगर देखा जाए तो हम सब इस वक्त दुनिया में जिस दौर में दाखिल हुए हैं ये करीब है क़यामत का। नबी सल्लम ने फरमाया कि मेरा आना क़यामत की कुर्बत की अलामत है, क्योंकि जितने नबी आने थे ना, मारूफ है कि 1,24,000 पैगंबर वो आ चुके चले गए, अब इसके बाद कितने रह गए हैं कोई भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब वो नबी जो सब चले गए आदम से लेके नबी सल्लम तक, वो कितना लंबा अरसा गुजरा होगा, जरा बैठ के सोचिए। आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में गए हुए कितना वक्त हो गया, अभी तक क़यामत नहीं आई। इसी तरह अब हम मरेंगे ना तो हमारा कब्रों का वक्त हमारे उस उम्र के हिस्से से जो हम इस दुनिया में गुजार रहे हैं ना कई गुना ज़्यादा होगा। जिस बंदे को ये बात समझ आ जाए ना कि मैंने कब्र में इस ज़िंदगी से ज़्यादा वक्त गुजारना है और कब्र के बाद हशर के बाद जन्नत या जहन्नम का वक्त इन सब से ज़्यादा है और उसकी तो कोई इंतहा नहीं, तो मेरा ख्याल है कि उसको ये दुनिया कैसी लगेगी, बहुत बेमानी। ऐसे ही है ना, आप किसी जगह जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, आपको लगता है कि बस यहाँ 3 घंटे का फन है, फ्लायर ग्लैमर सब कुछ, और उसके बाद वापस आपको अपनी रूटीन में आ जाना है जहाँ बहुत सारे गम परेशानियाँ मसाइल है, तो आपको वो 3 घंटे भी बहुत थोड़े लगते हैं। आप कहते हैं हाय फिर वही मुसीबत है, हाय वहीं जाना है, फिर पिकनिक के लिए चले जाएं, सैर के लिए चले जाएं, किसी शादी मंगनी में चले जाएं, आपको एहसास होता है कि अच्छा इसके बाद फिर कुछ नहीं। बिल्कुल यही हाल हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी का है। अल्लाह ताला कहते हैं तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, और अभी तो हमने बात की ना क़यामत के आने की, लेकिन हम में से हर एक की अपनी क़यामत कब आती है, जब हमारी मौत आती है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि मम माता फ़कत क़ामत क़यामत हो, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई, क्योंकि मौत के साथ ही हमारे वो सारे असरात शुरू हो जाते हैं जो हमें मरने के बाद पेश आने वाले हैं। मौत का वक्त जब होता है तो उस वक्त फरिश्ते जो आते हैं उनका आना ही पता चल जाता है कि अब हम जन्नत के राही हैं कि जहन्नुम के हैं। ये एक और मौके पे हम इस पे डिटेल से बात कर चुके हैं सूरत अल आराफ की आयतों में, कि मरने के बाद रूह के साथ क्या होता है, जर्नी ऑफ द सोल, कि हमारी रूह के साथ क्या होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं ना कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है। इसको एक बात में आप सुनना चाहें तो शायद वेब पे लेक्चर होगा, आप सुन सकते हैं कि मरते ही नेक के साथ क्या होता है और बद के साथ क्या होता है, क्योंकि ये वो मौजू है कि जिस पे अमूमन लोगों ने बहुत ज़ईफ़ रिवायतें भी जमा की हुई हैं, और एक बड़ी मारूफ किताब है मरने के बाद क्या होगा, उसको बहुत शौक से लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी रिवायतें ज़ईफ़ हैं। तो सही अहदीस की रोशनी में उसमें देखा हुआ हमने, यहाँ तो बात हम करेंगे हिसाब की कि आज मरे कल दूसरा दिन। आज इस दुनिया में हम जो आए हैं ऐसे लगता है कि कभी यहाँ से जाना ही नहीं, मुझे तो यही लगता है, ऐसे लगता है कि बस अल्लाह ने हमेशा हमें ऐसे रखना है। और कितनों को मरता देख ले अपनी मौत का यकीन नहीं आता। सबसे मुश्किल चीज़ यह है कि इंसान को अपनी मौत का यकीन आ जाए। इसी तरह घंटी बजेगी, इसी तरह लोग कहेंगे आज फलां का इंतकाल हो गया, अपने नाम के साथ ये जुमला बोल के देखें कि ये खबर आती है कि मैं मर गई, तो क्या हाल होगा। दुनिया वाले तो ये सोच रहे होते हैं ना, ये चला गया, और उस इंसान के साथ क्या है उसका हिसाब, उससे मुलाकात करने को तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजूल कदम अन इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन्हु खमसा। आदम का बेटा क्यामत के दिन मैदाने महशर से कदम भी नहीं हटा सकेगा जब तक के पांच सवालों के जवाब ना दे दे। पांच सवाल मस्ट, कंपल्सरी। आपने दुनिया में कई इम्तिहान दिए होंगे, आप उन इम्तिहानों में देखते हैं कि पांच सब्जेक्ट हैं, उन पांचों को करना पड़ता है। आप सुनना चाहेंगे कि क्यामत के दिन के पांच सवाल कौन से हैं? और ये अल्लाह ताला की खास रहमत है कि उसने हमें पहले से बता दिया। दुनिया में किसी पर्चे का पहले से आउट होना उस पर्चे को कैंसिल करा देता है कि जी वक्त से पहले पेपर रिलीज हो गया, गलती से हो जाए, किसी की लापरवाही से हो जाए या किसी वजह से हो जाए, वो पेपर नहीं होता। क्योंकि सवाल तो सारे पहले ही पता चल गए, अब तो लोग सारे तैयार करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए इंसानों की गफलत, पर्चा रिलीज्ड है, सब कुछ पता है, तैयारी फिर भी नहीं करते। वो कौन से सवाल है? इस हदीस को पूरा करके फिर अगर आप इंशाल्लाह मौका हुआ तो आपको, बल्कि इससे पहले मैं आपको कब्र के तीन सवाल बता देती हूँ ताकि तरतीब बाकी रहे। इस हदीस को थोड़ा सा पेंडिंग में रख लेते हैं। मरने से लेके एक इंसान के साथ हिसाब किताब के नाम से क्या मामला पेश आता है? अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायात का ये खुलासा है कि जब एक शख्स मरता है और उसके रिश्तेदार अभी उसको कब्र में दफन करके वहां से हटते भी नहीं है कि उस मुर्दे को कब्र में जिंदा कर दिया जाता है। अब वो जिंदगी किस तरह की है, वल्लाहु आलम। हमारा ईमान है कि मुर्दा जिंदा होता है। फयातियानी मलकानी फयुजलिसानी, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं, फिर उससे हिसाब लिया जाता है। तीन सवाल हैं जो कब्र में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला सवाल क्या है? मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन था बताओ, किसको रब कहते थे? आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, किसको नहीं आता अल्लाह का नाम, अल्लाह, रब, गॉड। लेकिन जिसने जिंदगी में अल्लाह के हुक्म को अहमियत ना दी होगी, उसकी जुबान पे लफ्ज अल्लाह नहीं आएगा। जिसने शिर्क किया, जिसने गैरों को पुकारा, बुजुर्गों को पुकारा, उसकी मदद, उसकी मदद, वो लफ्ज अल्लाह नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा लादरी, लादरी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि वो कहेगा काश मैं कुछ लिखता पढ़ता और आज इस सवाल का जवाब देता। इससे पता चलता है कि कब्र के इन सवालों के लिए भी इंसान को इस जिंदगी में अल्लाह के दीन को सीखना पड़ता है। आज तो हर एक बोलता है ना, अपनी जुबान से बोलता है, समझता है, पढ़ता है, लेकिन कब्र से लेके हशर के मामलात में हर बंदा अपने आमाल की निस्बत से बोलेगा। लिहाजा जिसने अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना होगा वो लफ्ज़ अल्लाह भी नहीं बोल सकेगा। लेकिन एक ईमान वाला जिसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मोहब्बतों में गुजरी, जिसने अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं मांगा, जो सिर्फ ज़ुबान से नहीं कहता था कि या कना अबुदू व या कनस्तईन, बल्कि जो हकीकत में अल्लाह का बंदा था, वो फौरन कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। पास हो गया और दूसरा फेल हो गया। फिर अगला सवाल होगा मर रसूलू का, तेरे रसूल कौन थे? देखिए कब्र का सवाल क्या है कि रसूल कौन थे, और इसका जवाब भी वही दे सकेगा जिसने जिंदगी में रसूल से मोहब्बत की होगी, उनके तरीकों से मोहब्बत की होगी, उनके हुक्मों पे चला होगा, उनकी सुन्नतें उसको बड़ी प्यारी होंगी, जो हर उस चीज़ से बचेगा जिससे रसूल बचे, हर वो काम करना चाहेगा जो रसूल ने किया, वो तो फौरन कह देगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इसके बरक्स कोई दूसरा चाहे कितनी मोहब्बत करे रसूल से, उनका नाम लेके अंगूठे चूमे, उनका नाम लेके दरूद पढ़े, उनके नाम पे नाते पढ़े मोहब्बत के साथ, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में रसूल की तालीमात का अक्स नहीं होगा तो लफ्ज़ मोहम्मद उसकी ज़ुबान पे नहीं आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी यही कहेगा, लादरी लादरी, काश पढ़ता लिखता और आज इस सवाल का जवाब देता। अनपढ़ ही रहा, दुनिया का तो सब कुछ ही पढ़ता रहा। जिसकी जरूरत सिर्फ चंद साल थी, उसको पढ़ने के लिए कितना वक्त लगा। और जिस सवाल का जवाब हर एक को देना है, उसकी तैयारी मैंने नहीं की। फिर तीसरा सवाल होगा, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या था, व्हाट वॉज योर रिलीजन, इसका भी जवाब वही देगा जिसने दीने इस्लाम के तकाजों को पूरा किया होगा, निभाया होगा। इसके बरक्स दूसरा तो ये कह देगा, लादरी लादरी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ थोड़ा सा रुक के अपना मुहासबा करते हैं, मेरा अल्लाह तआला के साथ ताल्लुक़ कैसा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा ताल्लुक़ कैसा है, और दीन इस्लाम को मैं कितना जानती हूँ और कितना मानती हूँ। सोचने की बात है, वरना होगा क्या, सूरत मुल्क में आता है कि जब जहन्नमी जहन्नुम में चिल्लाएंगे, धाड़ेंगे, गधे की जैसी आवाज़ें जहन्नुम में से आएंगी, जब वहाँ लोग होंगे तो फरिश्ते उनको पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, आगाह करता, तुम्हें वॉर्न करता, तुम्हें बताता अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं। तो वो क्या कहेंगे, कालू बला, आए तो थे, डराने वाले भी आए थे, बताने वाले भी आए थे, लेकिन हमने नहीं सुना, हम उनकी बात सुन के नहीं माना। और वहां हसरत क्या होगी, लव कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी असहाब सईर, काश हम सुनने वाले और अकल रखने वाले होते तो आज हम जहन्नमियों की सद में ना होते। तो हम सबको इसकी फिक्र करनी है, दुनिया की तालीम कितनी ले ली, कहाँ तक पहुँचे, कितने पापड़ बेले, चले हमने नहीं तो अपनी औलादों का सोच ले। सुबह से शाम तक हमारी रूटीन बच्चों के स्कूल के गिर्द घूमती है, कई साल लगते हैं, फिर कोई जाके मैट्रिक करता है। मास्टर करने के लिए 17 से 18 साल चाहिए होते हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए 20 से 22 साल चाहिए होते हैं कम से कम, हद तो है ही नहीं, आगे फिर एक्सीलेंसी, फिर और, फिर आप और आगे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो चीज़ जो हम सबको पेश आने वाली है, उसके लिए क्या किया, हम सब सोचें। ये बात नहीं है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, हम खुद ना सीखें, कॉलेज ना जाएं, यूनिवर्सिटी ना जाएं, ये मुराद नहीं है, क्योंकि अगर हम दुनिया का नहीं पढ़ेंगे ना, तो हम दीन का भी नहीं पढ़ेंगे। और मैंने आजमाया है, जो लोग दुनियावी तालीम से ज़रा पीछे होते हैं ना, उनको दीन की भी कदर नहीं होती। दीन की तरफ ही वही लोग आते हैं जो दुनियावी तौर पे पढ़े लिखे होते हैं, उनके अंदर शौक होता है लर्निंग का, बैठते हैं, लिखते हैं, टेस्ट देते हैं, उनको होता है कि वाह, हमने 20 साल उस तालीम के लिए लगाए जो मेरी जिंदगी के लिए है, तो मैंने अगलों के लिए क्या किया है कि जिसके लिए मुझे अल्लाह बुला रहा है। और अमूमियत का हाल क्या होता है कि वहम फी गफलत मोरिदून, वो गफलत में मुंह फेरे होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हिसाब का वक्त सर पे पड़ा हुआ है, लेकिन गफलत में मुंह फेरे में। कब्र के इन 3 सवालों के बाद जो हशर के 5 सवाल होंगे, ला तजूल कदमन इब्ने आदम, नहीं हटा सकेगा आदम का बेटा कदम, मिन इंदी रब्बी ही, अपने रब के पास से। जरा सोचिए, सबसे बेनियाज होके अकेली आप हैं और सामने रब है और सारी जिंदगी का हिसाब है। बताओ क्या क्या नेमतें थी, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या पीते थे, तुम्हें क्या क्या दिया था मैंने, लेकिन तुम्हारा हाल क्या था। वहम फी गफलत मोरिदून, गफलत के पर्दे पड़े हुए थे। आज अल्लाह ताला सवाल पूछता है, पहला सवाल होगा अन उम्री ही, उम्र के बारे में, लाइफ, फी मा अफना हो, उम्र कहाँ फना करके आए, ये तो जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना, हम तो कहते हैं ना हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं तुम उम्र फना कर रहे हो। और देखिए, जो साल हमारी जिंदगी से गुजर गया, क्या कभी वापस आने का, आप एक साल के जाने की खुशी मनाते हैं, मैं सोचती हूँ ये तो गम की बात है, किया क्या आपने, उस एक साल में जितना खाना खाया क्या उसका हक अदा किया, उस एक साल में जितनी ऑक्सीजन ली, जितनी हवा ली, जितना पानी पिया, उसके बदले में हमने क्या किया। उम्रों का हिसाब पूछा जाएगा। आज दुनिया में सबसे मुश्किल पर्चा जो होता है ना, वो हिसाब का पर्चा होता है। अमूमन लोगों को लगता है, अमूमन लोग घबराते हैं हिसाब से। और छोड़ दें, मियाँ ही एक महीने का हिसाब लेना शुरू हो जाए ना बीवी से कि जो तुम्हें खर्चे के लिए पैसे दिए तो उसका एक एक पैनी का हिसाब दो, तो मेरा ख्याल है औरतें नहीं दे सकती। जिनके मर्द पूछते हैं फिर वो हर वक्त बेचारियां लिख रही होती हैं, इतना ये उतना वो इतना ये। वहां क्या होगा जब पूरी जिंदगी का हिसाब होगा। इस वक्त मैं और आप, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में है ना, कोई 10 साल का हो गया तो कोई 20 का, तो कोई 15 का, तो कोई 60 का, तो कोई 70 का होगा। जितनी उम्र बढ़ती गई हिसाब सख्त होगा। रिवायतों में आता है कि 60 साल की उम्र का जो होके गया उसका हिसाब और सख्त होगा। क्यों? हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे पूछें कि बताओ क्या किया, मेरी किताब सीखी, मेरे कलाम को पढ़ा? नहीं, अल्लाह वक्त ही नहीं मिला। पहले बच्ची थी, स्कूल जाती रही, फिर बड़ी हुई, फिर शादी हो गई, फिर ससुराल में पड़ गई, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां, फिर इस तरह होते होते बस फिर तेरे पास आ गई। अच्छा, उम्र कितनी थी? 60 साल से ऊपर। कहा तुम्हें 60 साल में इतना भी मौका ना मिला कि तुम 1-2 साल मेरी किताब के लिए लगा देती? इस कहां तक इसका उजर झूठा है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि उम्र का सवाल होगा। कहने वाला भी और सुनने वाले भी सोचें, क्या हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं? कहीं हमारा आज वो हाल तो नहीं है कि बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। किसी को सिर्फ ये कह के मोहलत देते रहते हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्ची है, बच्ची बच्ची बच्ची, छोटी है अभी, इसकी समझ नहीं पूरी, चलो अब ये कहें जी इनको क्या हो गया, नहीं ये जवान है, इनको ना कुछ कहें, जवान खून गर्म होता है, इनके मुंह ना लगें, ये और वो, इनकी अपनी मसरूफियात है, इनको बहुत चाहिए। अच्छा जी आप कौन है? अब हम तो बूढ़े हो गए, अब हम कहाँ पढ़ेंगे, हम कहाँ समझेंगे, हम कहाँ सीखेंगे? और नतीजा क्या है कि उजर ही उजर। चलिए एक सवाल तो पूरा हुआ, कुछ ले दे करके इधर उधर से डाल के अगर अल्लाह ने उम्र के एक एक लम्हे का हिसाब पूछ लिया, तो अगला सवाल इससे भी संगीन है, और वो क्या है? अन शबाबी ही फी मा बिलाहू, जवानी कहाँ पुरानी करके आया। ये बताओ, क्या पहले सवाल में ये दूसरा सवाल नहीं आता? क्या जवानी उम्र का एक हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन क्यों अलग कहा? जवानी की अहमियत से। जितनी मुंह मारियां जवानी में होती हैं ना, उतनी बुढ़ापे में नहीं होती और बचपन में नहीं होती। जवानी मुंह जोर हो जाती है, जवानी में इंसान मस्त हो जाता है, वो कहता है अब जो करना है बस मुझे इस दुनिया के लिए करना है। अब देखिए, जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा होता है जवानी, और अमूमन जवान लोगों की क्या मसरूफियात होती हैं, इल्ला माशाल्लाह। आप आजमा के देख लें कि जो दौर जवानी का है ना, वो फिर कभी नहीं आता। और उसमें जो इंसान की तरजीहात होती हैं, अमूमन दुनिया की होती हैं, कैरियर बनाना है, पढ़ना है, फिर मुझे जॉब करनी है, अब जवान है, इनकी शादियां होनी है, अब ये होना है, वो होना है, बहुत अच्छी बात है। और हम देखें ना, तो अपने आप को हमेशा जवान लोग अच्छे लगते हैं। बीवी का क्या दिल चाहता है कि शौहर कैसा हो? जवान, खुद चाहे बूढ़ी हो जाए। और शौहर का क्या दिल चाहता है? बीवी कैसी हो? जवान, चाहे खुद बूढ़े हुए हो, ठीक है ना? माँ को कैसा बेटा अच्छा लगता है? जवान बेटा, मेरा काम करेगा। बेटी कैसी? जवान बेटी जो मेरी घर में हेल्प कर दे। बल्कि आज के तो बच्चों को भी माँ बाप जवान चाहिए, वो भी कहते हैं कि बूढ़ी मम्मी अच्छी नहीं लगती है। तो जब सारी जगह जवानी है, तो सोचें कि अल्लाह को क्या देंगे। अमूमन हम अल्लाह के रास्तों में प्रैक्टिकली कब आते हैं? एक तो ये ना कि हम कर रहे हैं रस्मी नेकियां, नमाज, रोजा, अल्लाह ने तौफीक दी, आदत भी है शुरू से करने की, लेकिन जिसको कहते हैं ना डिवोट करना, अपना आप लगा देना, अमूमन हम जवानी किनको देते हैं? दुनिया वालों को देते हैं ना। अल्लाह ताला यही तो कहते हैं कि जब कभी इनके पास अल्लाह का जिक्र आता है, मा याती मिन जिक्र मिर रब्बिहिम मुहदसन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई नया जिक्र आता है, तो खेलते कूदते सुनते हैं, सीरियस ही नहीं लेते। लाहियतन कुलूबों, लव है दिल में, बेकार बेमकसद चीजों में। और लव कहते ही उस चीज को है जो चीज इंसान को उसके मकसद से गाफिल कर दे। कहीं खेल है, कहीं तमाशे हैं। और अमूमन देखिए कि लोगों की जिंदगी अमूमन क्या दिखती है, खेल तमाशे। ये दुनिया क्या है आपको पता है? ये गुड़िया गुड्डे का खेल है। कभी बचपन में जब लड़कियां गुड़िया गुड्डे से खेलती थी ना, अब तो नहीं खेलती, ये मुझे पता है। अब लड़कियों के गेम्स भी वही हैं जो लड़कों के हैं। पहले लड़कियों के हाथ में गुड़िया होती थी तो लड़कों के हाथ में गाड़ियां होती थी, अब दोनों के हाथ में कंप्यूटर है और दोनों अपनी मनपसंद चीजें खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप अगर इस दुनिया को देखें ना, तो ये क्या है, एक स्टेज है। हम सब इस दुनिया पे आते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं और चले जाते हैं। अब इस दुनिया के चंद घंटों को हमने कैसे गुजारा? अमूमन देखिए जो प्लेस होते हैं ना, ये फिल्में होती हैं, वो भी 3 ही घंटों की होती हैं, 3 आवर्स होती है ना। तो हमारी जिंदगी के इस खेल तमाशे की ड्यूरेशन कितनी है? 3 ही घंटे हैं। पहला बचपन का घंटा है, दूसरा जवानी का है, और तीसरा बुढ़ापे का है। हम सब किरदार बने हुए हैं। एक माँ है, 2 बेटियां, एक शौहर है, एक बाप है। ये खेल है। ये असल रिश्ते कब बनेंगे? ये मरने के बाद बनेंगे। इसी की दलील है कि दुनिया से कोई रिश्ता चला जाता है, उसके हाथ में भी नहीं है, और जाने वाला कभी नहीं कहता कि अब मेरे पीछे बच्चे हैं, माँ है, फुलाएं फुलाएं। जब कोई फौत होता है तो चला जाता है, हमने भी चले जाना है। तो जरूरत है इस बात की कि अपनी जिंदगी को देखें कि हमारी जवानी कहाँ लग रही है। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, फारसी का एक ये कहावत है कि जवानी में तौबा करना नबियों का शेवा है, उनकी आदत है। हर नबी जवानी में नबी बना। आज अगर हम वही करें जो सब कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? अमूमन जवानी लापरवाही का नाम है। फन, ग्लैमर, दोस्त, सेलफोन, गाड़ियाँ, वीकेंड्स, मूवीज, ये कुछ है ना, ये तो सभी करते हैं। मैं अपनी जवानी को ज़ाया क्यों करूँ? मुझे तो वो करना है कि जो मेरी जवानी को हमेशा की जवानी में बदल दे। कैसे? जन्नत में। आपको पता है कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। एक बूढ़ी खातून आई और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? कहा, नहीं बूढ़ी, तुम नहीं जा सकती। तो रोने लगी, क्या अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी? तो आपने फरमाया कि तुम वहां जवान बना के भेजी जाओगी। आप जरा सोचें तो सही, खास तौर पे वो लोग जिनको अब गम लग रहा है कि हम बूढ़े होने के करीब हो रहे हैं। सारा दिन अपनी केयर की फिक्र है, अपनी स्किन को देख रहे हैं, क्रीमें ऐसी ईजाद हो गई, एंटी एजिंग क्रीमें, एंटी रिंकलिंग क्रीमें, कितनी मेहनत करते हैं ना। और कोई आपसे कहे कि एक ऐसा तरीका है कि आप बूढ़ी नहीं होंगी कभी, तो मेरा ख्याल है कि औरतें अपना घर बेच के वो क्रीम खरीद लेंगी कि अच्छा मैं बूढ़ी नहीं होंगी। और इसी तरह अगर कोई ये कह दे कि तुम्हें एक तरीका इख्तियार करना है जिसके बाद तुम्हें मौत नहीं आएगी, सोचें जरा। मेरा ख्याल है कि मौत का खौफ हर इंसान के दिल में है ना, नेमतों में तो भी है, गम में तो भी है। हाय मर जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा, हाय मैं मरना नहीं चाहती। चले, आपको कोई कहता है कि एक ऐसी चीज़ है कि आपको मौत भी नहीं आएगी। और दुनिया में क्या अंदेशे होते हैं? बीमारी, सेहत का ख्याल रखो, मोटे कपड़े पहन के जाओ सर्दी लग जाएगी, अच्छी चीज़ खाओ वरना फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ये विटामिन, ये टेस्ट, थोड़े थोड़े महीनों बाद डॉक्टर से फुल चेकअप करवाओ, कुछ हो ना जाए, मर ना जाए हम। हाँ, कोशिशें करते हैं ना। कोई आपसे कह दे कि एक ऐसा तरीका है कि आप कभी बीमार नहीं होंगी, क्या वो ख्याल होगा? अच्छा वाकई बीमारी नहीं आएगी? अच्छा बस इतना ही नहीं, एक और चीज़ होती है जो दुनिया में इंसान को अच्छी नहीं लगती, और वो क्या है? बेसुकूनी, शोर गुल। कोई ऐसा बंदा है जो आपको गालियां दे रहा है, माहौल खराब है, अजीब व गरीब ताने, तशनी, इल्जामात हैं, और कोई आपसे आके कहता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ कोई किसी को ताना नहीं देगा, कोई सास किसी बहू को ताना नहीं देगी कि जहेज कम लाई, और कोई बहू अपनी सास को ताना नहीं देगी, ये कैसा मर्द तुमने मेरे लिए तैयार किया, तरबियत अच्छी नहीं की आपने अपने बेटे की, कुछ भी नहीं होगा। अब ये सारे जो ख्यालात है ना, ये कहाँ पूरे होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी रिवायत है कि उसका खुलासा क्या है कि आपने फरमाया कि जब सब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में, तो अल्लाह ताला मौत को एक मेंढे की शक्ल में, जैसे बकरा होता है ना गोट या शीप, मेंढे की शक्ल में लाएंगे, चितकबरा होगा यानी थोड़ा सफेद थोड़ा काला होगा, और उसको जन्नत और जहन्नम के बीच में लाके ज़िबह कर देंगे। और एक पुकार लगेगी कि आज के बाद अब किसी को मौत नहीं है, जो मर गया वो मर गया, अब नहीं मरेगा। और हदीस में आता है कि इस पुकार को सुनकर अगर मौत होती तो जहन्नमी गम की वजह से मर जाते हैं कि खाए अब ये अजाब हमेशा के हैं, दुनिया के गम तकलीफें तो छूट जाएंगी मौत के बाद, अल्लाह ना करे अगर वहां की जहन्नम मिल गई तो क्या होगा। और अगर मौत होती तो इस कॉल को सुनकर जन्नती खुशी से मर जाते कि हाय आज के बाद कभी मौत नहीं, हम इतनी लज्जतों में होंगे, लेकिन जन्नत में मौत नहीं। ये बुखारी की रिवायत है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जन्नतियों को पुकार लगेगी कि आज के बाद तुम में से कोई बीमार नहीं होगा, कोई शोरो गुल नहीं होगा, कोई सताया नहीं जाएगा। आप सोचिए दुनिया में ये सारी नेमतें पाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, आला स्टेटस, अच्छे शहर के अच्छे इलाके में घर हो, अच्छी गाड़ी हो, ब्रांड न्यू कंप्यूटर, हर 2 माह बाद नया सेलफोन, स्टैंडर्ड स्टेटस, कपड़े, ये सब कुछ वहाँ अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन उसके बदले में हमने क्या करना है, अपनी जवानियों को अल्लाह के रास्ते में लगाना है। अल्लाह कुछ भी नहीं लेगा हमारा, यकीन करके देखें। हमने इस दुनिया को इतना कुछ दिया लेकिन हमें नहीं पता कि 18-20 साल में जो हमने पढ़ा हम उससे फ़ायदा उठाएंगे कि नहीं। हर मेडिकल पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बनता, बाज़ लड़कियों की शादियां हो जाती हैं प्रैक्टिस नहीं करती, कहाँ गए वो 20 साल की मेहनतें, आंखों में हल्के पड़ गए, गया ख़त्म। इसी तरह एक वाक्य हुआ था कहीं कि माँ बाप ने बड़ी मेहनत से लड़के को पढ़ाया, CA करवाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे होता है, जब वो सब पढ़ चुका तो कुछ जिस समय तकलीफ़ महसूस हुई, जब चेक करवाया तो उसको कैंसर था। अब वो लड़का जो था वो हॉस्पिटल में एडमिट था, माँ बाप को बुला के कहता है कि आप ये बताएं कि आपने मेरे लिए क्या किया। उन्होंने कहा देखो इतना कुछ किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतनी जो माँ बाप की ख्यालात होते हैं, कहने लगा कि ये सब तो आपने मेरे यहाँ के लिए किया था ना, ये बताएं कि मैं तो अब जा रहा हूँ, आपने मेरी आखिरत के लिए क्या किया। अब इसका जवाब नहीं था माँ बाप के पास, हम तो यही सोच रहे थे कि तुम्हारी दुनिया बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, कहा नहीं आपने मेरा हक नहीं दिया। फिर कहते हैं कि हॉस्पिटल में उसके लिए इंतजाम हुए, उसने कहा कि मेरे पास वक्त थोड़ा है, मुझे दीन सीखना है और मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। वहीं फिर उसके लिए टीचर्स का इख्तमाम हुआ, कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई अरबी पढ़ा रहा है। तो बात यह है कि हम में से किसी को नहीं पता कि हमारे पास कितने दिन हैं, मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती, कर भी देगी ना तो जवानी गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। वो लोग जो इस वक्त 40 से ऊपर है, 50 से, ज़रा उनसे पूछें वक्त कहाँ गया तो कहेंगे पलक झपकते में गुजर गया, बस आए थे दुनिया में और जाने का वक्त हो गया। किसी को डेथ बेड पे पूछें, किसी का कॉल है कि वो मौत के बिस्तर पे थे, जब डेथ बेड पे थे तो किसी ने पूछा क्या महसूस हो रहा है, तो कहा ऐसे लगता है कि दुनिया के एक दरवाजे से दाखिल हुआ था और साथ ही अब दूसरे से बाहर जा रहा हूँ। और ये उस दौर की बातें जब 100-100 साल उम्रें होती थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 1,000 साल की उम्र, आदम अलैहिस्सलाम 1,000 साल की उम्र, और इसी तरह लोगों की उम्रें 200-200, 300-300 साल तो आम थी। एक रिवायत में आता है कि एक बूढ़ी औरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आई तो रोने लगी, कहने लगी देखो मेरा एक बेटा सिर्फ 200 साल का होके मर गया, एक मेरा 300 साल का मर गया, और अम्मा रो रही है कि ये छोटी उम्र है। तो उस पे उन्होंने कहा कि अम्मा तुम शुक्र करो इसलिए कि हमारे बाद एक ऐसी कौम आने वाली है जिनकी शान तो बहुत बुलंद होगी लेकिन उनकी उम्रें बड़ी थोड़ी होंगी। इशारा था उनका उम्मते मोहम्मदिया की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब अम्मा ने ये बात सुनी ना तो कहने की अच्छा फिर तो वो मिट्टी के घरों में रहेंगे, यानी 60-70 साल की उम्र के लिए क्या घर बनाने, कच्चे घरों में रह लेते हैं। आज वो अम्मा होती तो ज़रा देख के हैरान होती हमें, लेकिन हकीकत है कि हम सब बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, उसके लिए आज तैयारी करनी है। तीसरा सवाल क़यामत के मैदान में जो होगा वो माल के बारे में होगा, अन मालिन मनी के लिए, मिन ऐनक तसबहु कहाँ से कमाई, व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इनकम, कैसे अर्न करते थे, हलाल से या हराम से, अल्लाह की नाराजगी या रजामंदी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी इस बात की परवाह ही नहीं करेगा कि जो माल उसके घर में आ रहा है वो हलाल से आ रहा है कि हराम से आ रहा है, कुछ नहीं परवाह, बस ये कि आता रहे। हम कहते हैं ये मर्दों का मामला है, मर्दों का नहीं है, अब औरतें बराबर की शरीक है, और हर औरत को पता होता है कि मेरे मर्द की तनख्वाह कितनी है। अगर तनख्वाह से बड़ी चीज़ घर में आ गई तो ये कहाँ से आई, हर एक को सोचना है। इसलिए कि जब हमारे सोर्स ऑफ इनकम में कोई ऐसी चीज़ आती है तो ना हमारी नमाजें कबूल ना हमारे रोज़े कबूल। और इसी तरह फिर चौथा सवाल होगा, मिन ऐन अनफ़क़ु, माल खर्च कहाँ किया। ये तो सरासर औरतों का सवाल है, कमाते मर्द और खर्च औरतें करती हैं। एक एक ख्वाहिश पे हज़ारों खर्च कर देते हैं हम, एक शादी पे हम लाखों खर्च कर देते हैं, एक घर बनाने के लिए सारी जिंदगी की जमा पूंजी ख़त्म कर देते हैं, एक एक बच्चे को खुश करने के लिए हम बाज़ दफ़ा कितनी नाराज़गियाँ मोल लेते हैं। लेकिन वो खर्च जायज़ जगह पे होता है कि नाजायज़ पे। सिर्फ अपनी ज़िंदगी और आपके इर्द गिर्द ही देख लें कि मेरे पैसों से या मेरे हाथों से जो शॉपिंग्स हुई है वो कितनी सही जगह हुई है और कितनी गलत पे हुई है। मेरे घर में कितनी चीज़ें हैं जो अल्लाह के दीन को प्रमोट करने की हैं और कितनी है जो शैतान के मिशन में मददगार हैं। हर एक अपने हाल को खुद जानता है। पांचवा सवाल होगा कि जिस बात का इल्म हो गया था उस पे अमल कितना किया। माज़ा अमीला बीमा अल्लमा, इल्म के बाद अमल, क्योंकि जब बंदा बात सुन लेता है ना तो फिर उसकी जिम्मेदारी है उसको अमल करना है। सिर्फ इस हदीस को अगर हम सामने रख के अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, कितने दिन और रहेंगे, क्या हमारी कैफियत लाहियतन कुलूबहुम वाली तो नहीं है, हम लहव में तो नहीं मशगूल। अमूमन ज़िंदगी क्या है, अब फलां की शादी आ गई उसमें मसरूफ, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन नहीं, अब तो एक एक महीना शादी चलती रही, उससे पहले की दावतें उसके बाद की। ठीक है, अल्लाह ने मना किसी चीज़ से नहीं किया, लेकिन याद रखिए दुनिया की हर वो चीज़ जो आखिरत की कीमत पे लेंगे ना वो मसला होगा कल। अल्लाह आपको अपनी रजामंदी के साथ दुनिया के खजाने भी दे दे कोई हर्ज नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बड़ा माल था, बड़ी दौलत थी, लेकिन साथ हिदायत थी, अल्लाह को खुश करते थे, उन नेमतों को पा के भूलते नहीं थे, बल्कि कहते थे अल्लाह बता तुझे कैसे खुश करें। ख़ास तौर पे मैं अपने आप को कहूँगी कि हम लोग जिन नेमतों में हैं, ख़ास तौर पे आप देखिए जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, कोई ऐसी नेमत है कि जिसको आप सोचें और आपके पास ना हो? मुझे तो ऐसे लगता है कि ख्वाहिश बाद में पैदा होती है, चीज़ पहले आ जाती है। ना हमारे पास बिजली का मसला, ना पानी का मसला, ना कपड़े का मसला, ना गर्मी ना सर्दी, खाने बेहतरीन, बिस्तर आराम दे, गाड़ियाँ आराम दे, तो क्या इन सारी नेमतों के बदले में कुछ हमसे भी तो मांगा जाएगा कि नहीं? दुनिया में गिव एंड टेक का मामला चलता है, लो और दो। आपको कोई एक गिफ्ट देता है आप उसको दे देते हैं, कोई आपकी दावत करता है आप उसकी कर देते हैं, ऐसे ही है ना, आप काम करते हैं आपको बदले में पैसे मिल जाते हैं। अल्लाह को तो हमसे कुछ नहीं चाहिए, हम उसको क्या दें? कुछ नहीं देना, बस अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी की चलाना है। और वो कैसी होगी, वो कब पता चलेगा, जब उसके कुरान को पढ़ेंगे। आज हम सब अपना कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ देखें, बिल्कुल गैर जानिबदारी से, रात को अकेले में बैठ के, सब फारिग हो चुके हैं कामों से, फिर बैठ के सोचें कि मैं इस कुरान में से कितनी आयतें समझती हूँ। अरबी की आयतें हैं, मैं चंद आयतें अगर इधर से उधर से पढ़ूँ और आप हाथ खड़ा करके बता सकें कि इससे क्या मतलब है, कितना इससे क्या मुराद है, करना चाहते हैं? मैं करूँ एक आध सर आपके साथ ऐसी एक्टिविटी? ठीक है, बिल्कुल आसान, और वो आयतें पढ़ूंगी जो अमूमन आप पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करें, सिर्फ उसका मफहूम ही चले, कोई बता दे या समझ आ रही है। क्योंकि जब आप तर्जमे वाले कुरान खोल के पढ़ते हैं ना तो वो तो उतनी देर समझ आ रहा है ना जब तर्जमे वाला कुरान खुला हुआ है। अब मैंने उर्दू में बात की, आप सबको मेरी बात समझ आ रही थी ना, तो आपने बड़े शौक से सुना। अगर आप में से किसी को मेरी बात को साथ अपने डिक्शनरी खोल के या तर्जमे वाला कोई कोई बुक खोल के मेरी हर जुमले को ट्रांसलेट करना पड़ता, तो क्या आप इस तरह सुकून से सुन सकते थे? कोई कुरान के साथ भी यही मामला है। आपको जिस चीज़ की दावत हम देते हैं ना, वो देते हैं कि ये अरबी का कुरान है। ये देखें, इसमें एक लफ्ज़ भी नहीं है उर्दू का, ठीक है। हमारी दावत क्या है कि क्या आप ये सोच सकती हैं कि अरबी का कुरान आपके सामने खुला हो और आप पढ़ें तो आपको ऐसे लगे जैसे ये उर्दू का है। किसका दिल चाहता है कि उसको ऐसे कुरान समझ आए? सबका चाहता है ना। अब दिल चाहे तो उसके लिए चाहत से वो चीज़ मिल जाती है। सिर्फ चाहत तो सिर्फ उस रास्ते पर डालती है आपको जिस चीज़ में आपका दिल आ जाता है ना, आप करके रहते हैं। चाहे वो यख सर्दियों में आपको बर्फ़ का गोला खाने का दिल आ गया, खाना है तो खाना है। दुआ करें कि हमारे दिल चाहने लगे। ये दुआ करें सब अपने लिए कि अल्लाह मेरा दिल चाहने लगे कि मैं तेरी किताब को ऐसे पढूं कि मुझे उर्दू में समझ आए। फिर चाहत के बाद अगला मरहला क्या होता है? इरादा। इरादा इससे अगली चीज है। हम में से बहुत सारों की चाहत होती है लेकिन इरादे के मरहले पे नहीं आते, बस चाहत से समझते हैं कि ये काम हो जाएगा। हाँ नहीं, इरादा करना है। तो दूसरा काम हमने भी यहाँ क्या करना है? इरादा करना है। किस बात का? कि मैं ये काम करूंगी इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करूंगी कि मुझे ये करना है। फिर उसके बाद आप देखिए कि इरादों से भी बात नहीं बनती। तीसरा काम क्या होता है इरादे के बाद? कोशिश। हर इरादे को कोशिश के मरहले से गुजारें तो फिर बात बनती है। कैसे? छोटी सी मिसाल दूंगी आपको कि आप सबने इस घर में आना था। आपकी इस बहन ने एक दर्स का इख्तमाम किया। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो आके बैठे, सबसे पहले तो आपके दिल में इस चीज़ की चाहत पैदा हुई होगी कि इन्होंने मुझे बुलाया मैं जाऊं। सच है ना? आप में से कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लाया हुआ इधर है? ऐसा नहीं है ना, चाहत थी। फिर उसके बाद जब आपको इनविटेशन मिला तो आपके दिल में, अच्छा चलो भाई वहाँ सब जमा होंगे, अच्छी बात सुनेंगे, अच्छा मिलेंगे, बैठेंगे, चाहत पैदा हुई। फिर उसके बाद आपने उसके बाद क्या किया? इरादा। फौरन इरादा किया ना, जाऊंगी नहीं। तभी तो हम फौरन कह भी देते हैं कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी, राइट? जब आपने इरादा किया, कुछ लोग नहीं आए होंगे, कुछ को आपने बुलाया होगा लेकिन उन्होंने कहा होगा भी हमारी पहले से कोई कमिटमेंट है, ठीक है ना। चाहत उनकी भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आज ना आके भी वो हमारे साथ इस अजर में शामिल होंगे, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी। गोया कि वो दूसरी सीढ़ी से फिसल गए। चाहत थी सबकी है लेकिन इरादे की सीढ़ी से कुछ लोग वाइप आउट हो गए, निकल गए चले। कुछ जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने इरादा भी किया था, ऐसे थे कुछ लोग, लेकिन आज नहीं है ना, ठीक है। अब आप देखें कि दूसरी सीढ़ी पे आए इरादे की। तीसरी चीज उसके लिए जरूरत थी कोशिश की। आप सबने कोशिश की ना? कोई कह सकता है कि इधर आने के लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी? किसी को अपने घर को सेटअप करना होगा, बच्चों को छोड़ना, मियाँ को छोड़ना घर में, फिर कुछ कुछ जगह नहीं पता होगी, कुछ राइट्स के ढूंढा होगा, मियाँ का खाना रखा बेचारे भूखे घर में। हाँ कोशिश की ना आपने? अच्छा, कुछ लोग जो ना आ सके ना, वो कोशिश की कमी हो गई। किसने ये सोच लिया कि सर्दी बहुत है, हालांकि हमें तो लगी भी नहीं, और वो निकलते तो उनको भी ना लगती। सर्दी किसको लगती है? जो घर में बैठा होता है। एक दफा बाहर आ जाते हैं कुछ नहीं होता। बहरहाल चले, कुछ कोशिश के बाद आप देखिए कि रास्ते में जो मुश्किलात आती है ना, उसमें फिर सब्र भी करना पड़ता है। अब आप ये सारे मरहलों को तय करके यहाँ पहुंच गए। कुछ कोशिशों में गिर गए, कुछ इरादों में गिर गए, और अल्लाह माफ करे किसी के अंदर चाहत ही नहीं पैदा हुई हो। बहुत सुने में दर सब, हम क्या सुने, और हम नहीं सुनते। कुछ पहले ही शुरू हो जाते, नहीं नहीं हमें नहीं पता वो क्या सुनाएंगे, छोड़ दो बस। अब आप देखें, इस घर में आने के लिए ये चार काम है, तो उस जन्नत में भी आने के लिए यही काम होंगे कि हमें सबसे पहले ख्वाहिश करनी पड़ेगी, दूसरी बात उसके लिए इरादा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश के बाद हमें उस रास्ते में आने वाली मुश्किलात पे सब्र करना पड़ेगा। हर एक के लिए आसान नहीं होता। देखिए, कभी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं मिलेंगे कि दुनिया का हर काम हम कर चुके हों, फारिग हो चुके हों, हमें कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो, और कोई कह जी जाए अब आप और अल्लाह का दीन सीखे। इसी दुनिया में जीना है और यही इम्तिहान है। ये नहीं हुआ कि अल्लाह ने हमें कह दिया कि तुम किसी जंगल में चले जाओ और वहां जाके तो तुम्हें ना किसी की जिम्मेदारी हो, ना तुम किसी को बोझ डालो, ना कोई तुम पे डाले, और तुम मेरे काम करो। ये नहीं होगा। अल्लाह यही देखना चाहता है कि हम उसके लिए अपने मामूलात को कैसे चेंज करते हैं। बस आप देखिए कि ज़िंदगी तो नाम ही कुर्बानियों का है ना। हम में से बहुत सारी ख़वातीन, बल्कि हर शादीशुदा खातून कह सकती है कि मैं शादी से पहले जो मेरी ज़िंदगी थी और अब शादी और बच्चों के बाद भी वही है, कह सकती है। कभी नहीं कह सकती। एक घर से उठ के आप दूसरे घर में गए, एक एक मिनट पे कुर्बानी देनी पड़ती है। जज्बात की कुर्बानी, आदत की कुर्बानी, और सबसे बड़ी कुर्बानी तो नींद की देनी पड़ती है। माँ के घर में तो सोने की आदत थी, दोपहर तक सोते थे, अब ससुराल में कैसे सोएं। हाँ, फिर आप देखें कितनी बातें बुरी लगती हैं लेकिन खामोश रहना पड़ता है। फिर जिम्मेदारियाँ, घरों में काम नहीं किया होता करना पड़ता है। कोई ख़ास आदत शौहर को नहीं पसंद, कोई खाना नहीं पसंद, कोई कपड़ा नहीं पसंद। कुर्बानी कुर्बानी, औरत की तो सारी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी हुई है। तो क्या अल्लाह के दीन को कुछ नहीं देंगे? कल क़यामत के दिन जब सब के नाम लिए जाएंगे, और उनमें मेरा ख्याल है सबसे ऊपर नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का होगा। आओ लोगो, इब्राहीम से मिलो। ये वो है जिसको इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल असलमतु लिरब्बिल आलमीन। ये वो शख्सियत हैं कि जिनको जब कहा गया कि आओ अल्लाह की तरफ झुको, ये फौरन आ गए। समय न वाताना कहने वाले, लब्बई कहने वाले। घर में रास्ते में औलाद आई, औलाद को पीछे कर दिया, बीवी आई उसको कर दिया, माँ बाप का मसला वो उनको कर दिया, बस अल्लाह की तरफ चले गए, चलते ही गए। जब कभी रब ने उनको आजमाया तो वो उस आजमाइश में पूरे उतरे। ऐसे ही है ना, कामयाब हो गए। फिर उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है कि ये मिलिए, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने देखें दीन के लिए कितनी कुर्बानियाँ की। 13 साल मक्का मेरे अपने बेगाने हो गए, जो लोग कल सादक और अमीन कहते थे उन्होंने काहिन और मजनू कहना शुरू कर दिया, नाउज़ुबिल्ला, काजिब कहना शुरू कर दिया, और हमारे बाप दादा की रस्मों को तुम बुरा कहते हो। यानी मोहब्बतें करने वाले नफ़रतें करने लगे। इसी तरह नाम आते जाएंगे नबियों के, बड़ों के, बड़ों के। आप सोचिए उस वक्त हम कहाँ होंगे, सर छुपा के दुबक के बैठे होंगे। कोई एक कुर्बानी हम भी तो देके देखें अल्लाह के रास्ते में, फिर इसकी लज्जत तो देखिए। आपको पता है कि लफ्ज़ कुर्बानी का असल क्या है? कुर्ब। कुर्बानी क्या होती है? अल्लाह का कुर्ब पाने वाली चीज़। अगर हम अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हैं ना, तो कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। हम अल्लाह को कल क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला इतना कुछ दुनिया में हमने लिया दिया किया कराया, हमने तेरे रास्ते में कोई कोशिश ही नहीं की, कोई इरादा ही नहीं किए। तो एक छोटी सी इंशाअल्लाह ताला जो जिंदगी है हमारी, इसको आप बाकी रहने वाली कर सकते हैं। कैसे? इसमें अपने हिस्से का काम करके। और वो क्या है कि हमने आने वाली जिंदगी के लिए आज ही तैयारी करनी है। कुछ भी अल्लाह आपका और मेरा नहीं लेगा। आप उन लोगों को देखा करें जो इस रास्ते में हमसे आगे जा चुके हैं, ना वो इस दुनिया से कटे ना छुटा। उनको अल्लाह ने कोई ऐसा तो नहीं कर दिया कि काबिले रहम है, बल्कि आपके दिलों में इत्मीनान, खुशी, सुकून भर जाएगा और आप महसूस करेंगे कि वाकई असल ज़िंदगी वही है जो अल्लाह की रज़ा के साथ चलती है, अल्लाह की बात को मान के। देखिए कि ये कुरान तो वो किताब है जिसने ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताने थे। अब ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग से पहले एक गाड़ी चलाने के जो रूल्स रेगुलेशन है वो सिखाते हैं ना, उसमें ये रुकना है, यहाँ रुकना है, ये करना है, वो करना है। जब वो ना कोई पढ़े तो ड्राइविंग कर सकता है? कितना खतरा होगा जो गाड़ी चलाने बैठ जाए और उसको रोड साइन ही ना पढ़ने आते हो। हम जिंदगी की इस गाड़ी में इस कुरान की रहनुमाई के बगैर नहीं चल सकते। आप कहते हैं तर्जमा क्यों मैं पढ़ूं, मैं क्यों आके बाकायदा पढ़ूं सीखूं, ऐसे ही ठीक है जो दूसरे कह रहे हैं वही ठीक है। तो आप देखिए कि फिर शक कितने पैदा होते हैं। पता नहीं कोई क्या कहता है ठीक है, कोई कुछ कहता है ठीक है, कोई कुछ कहता है नहीं, लोग शक करने लगते हैं ना। कोई बता रहा था मुझे किसी की बात के, उन्होंने बात की कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो खाना काबा की तरफ मुंह तो हम करते हैं, किबले की तरफ, लेकिन सजदा अल्लाह को ही करते हैं। ये बात सच है ना कि सजदा अल्लाह को करना है, काबा को जो मुंह करना है वो तो अल्लाह का हुक्म समझ के करना है, वरना तो वो तो पत्थर है। अब किसी ने ये बात की दर्स में और किसी बेचारी खातून ने उस बात को कैसे समझा कि देखें जी ये तो कहती हैं किबले की तरफ मुंह ही ना करें, जिधर मर्जी मुंह कर लो, ये तो किबले को ही नहीं मानते। तो मैं मुस्कुरा दी, मैंने कहा इनको गलती लगी है, इनको सही बात नहीं पता। अब आप देखें कि जब ये चीज़ें होती हैं तो वो फिर इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करती हैं कि जब खुद सीख लेते हैं हम, तो फिर उसको तो हम बहुत यकीन के साथ उस काम को कर सकते हैं ना, कि हमने ये बात समझी हुई है, कोई दूसरा हमें मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकता उस चीज को हमारे लिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझने वाला बना दे। ए अल्लाह, जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा, उनकी बशरी खताओं से माफी दे दे, और उन इन दूसरों को भी तौफीक दे कि उनको माफ कर दे। किसी ने अगर किसी का कोई हक मारा या इंसान होने के नाते कभी दिल में बुरी बात आ गई, तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम दुनिया से जाने वालों को बख्श दें और उनकी बुराई कभी जाहिर ना करें। इसी तरह अल्लाह, जब हम दुनिया से जाएं तो तू लोगों को तौफीक देना कि हमें माफ़ कर दें, और हमारा या अल्लाह ईमान के साथ दुनिया से खात्मा करना, हमें उसी दीन पे रखना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और उसके अंदर किसी कमी बेशी का हमें मुर्तकिब ना करना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।